अध्याय 10 पारिवारिक वर्गीकरण। हमने देखा है कि केवल रचना तत्व के आधार पर भाषा का जो वर्गीकरण होता है वह आकृति मूलक वर्गीकरण है, पर रचना तत्व और अर्थ तत्व के सम्मिलित आधार पर किया गया वर्गीकरण पारिवारिक वर्गीकरण कहलाता है। आत्मविस्तार प्रकृति का सहज तथा अनिवार्य क्रम है। एक से अनेक की उत्पत्ति स्वाभाविक ढंग से हुआ करती है। एको अहम बहुश्याम प्रजाए, एक मैं बहुत होकर यानी नाना रूपों में उत्पन्न हो, उपनिषद का यह वचन सृष्टि की मूल भावना की व्याख्या है। एक मानव से समस्त मानव जाति की उत्पत्ति की कल्पना सभी धर्मों में समान भाव से दिखती है। हिंदू मनु से मानव जाति की उत्पत्ति मानते हैं तो मुसलमान और ईसाई आदम से। यह क्रम मनुष्यों में ही नहीं पशु पक्षियों कीट पतंगों और पेड़ पौधों में भी देखा जाता है। भाषा भी इसका अपवाद नहीं है। चार कोस पर पानी बदले आठ कोस पर बानी, यह कहावत भाषाओं की अनंतता की द्योतक है। हमने देखा है कि संसार में आज जितनी भाषाएं बोली जाती हैं उनकी संख्या प्रायः 3000 है। इस संख्या बाहुल्य को देखने पर स्वभावतः यह प्रश्न उठता है कि भाषाओं में परस्पर कैसा संबंध है या नहीं। भाषाओं में रचनात्मक संबंध पर हम विचार कर चुके हैं कि वह संबंध बाह्य है, क्योंकि वह पदों या वाक्यों की रचना तक ही सीमित है। भाषाओं का एक अंतरंग संबंध भी है जो केवल बाह्य रचना तक ही सीमित नहीं बल्कि अर्थ को भी आधार बनाकर चलता है। इस प्रकार एक पूर्वज से उत्पन्न सभी मनुष्य एक गोत्र के माने जाते हैं, उसी प्रकार एक भाषा से कालांतर में अनेक सगोत्र भाषाओं की उत्पत्ति भी होती है जो एक परिवार में रखी जाती हैं। उत्पत्ति या परिवार को यहाँ बिल्कुल उसी अर्थ में नहीं लेना चाहिए जिस अर्थ में मनुष्य की उत्पत्ति या परिवार की कल्पना की जाती है। अर्थात भाषा के प्रसंग में इन शब्दों का प्रयोग लाक्षणिक होता है। अतः उत्पत्ति का अर्थ सहसा आविर्भाव नहीं बल्कि क्रमिक विकास समझना चाहिए। एक भाषा से दूसरी भाषा उत्पन्न हुई, यह कहने का अभिप्राय यह है कि पहली भाषा दूसरी भाषा में रूपांतरित हो गई। यह रूपांतरण या परिवर्तन भाषा में कैसे होता है हम यह ऊपर देख चुके हैं और उन नियमों पर विचार कर चुके हैं जिनसे भाषा परिवर्तित होती है। उत्पत्ति विकास और विनाश का क्रम सभी लौकिक वस्तुओं के समान भाषा में भी चला करता है। किसी पूर्ववर्ती भाषा से नई भाषा उत्पन्न होकर विकसित होती है और अनंत विनष्ट हो जाती है। भाषा के विनष्ट या मृत हो जाने का अर्थ भी लाक्षणिक ही है। भाषा के मृत हो जाने का अर्थ है दैनिक प्रयोग में उसका न आना। प्राकृत या लातिन इसी दृष्टि से मृत हैं, अन्यथा उनकी वंश परंपरा आज भी चल रही है। जैसा कहा जा चुका है भाषाओं के लिए परिवार शब्द का प्रयोग भी लाक्षणिक ही है। भाषाओं के माता पिता या भाई बहन नहीं होते। एक मूल भाषा से जब अनेक भाषाओं का विकास होता है तो उस मूल भाषा को अपनी जननी मान लिया जाता है और जो भाषाएं उससे विकसित होती हैं वे लौकिक संबंध के आधार पर परस्पर बहने बन जाती हैं। इसलिए लौकिक व्यवहार से गृहित इन शब्दों का प्रयोग लाक्षणिक या अलंकारिक दृष्टि से ही करना चाहिए। पितृ संस्कृत, लातिन में पातेर, फारसी में पिदर, अंग्रेजी में फादर और जर्मन में फादेर। संस्कृत में मातृ, लातिन में मातेर, फारसी में मादर, अंग्रेजी में मदर, जर्मन में मुत्तेर। संस्कृत में भातृ, लातिन में फातेर, फारसी में बिरादर, अंग्रेजी में ब्रदर, जर्मन में ब्रुदेर। संस्कृत, लातिन, फारसी, अंग्रेजी और जर्मन के बीच हजारों मील की दूरी है, फिर भी इन शब्दों का साम्य आश्चर्यजनक है। इतना साम्य निश्चय ही आकस्मिक या अकारण नहीं हो सकता। स्वभावतः प्रश्न उठता है कि परस्पर दूरस्थ भागों में बोली जाने वाली उपर्युक्त भाषाओं में इस असाधारण साम का क्या कारण है। तब यह कल्पना असंगत नहीं प्रतीत होती कि हो न हो ये भाषाएं किसी एक मूल रूप से विकसित हुई हैं, अर्थात ये परस्पर संबद्ध हैं। वह मूल रूप क्या था, उसका प्रसार इतनी दूरी तक कैसे हुआ, उसमें उच्चारण संबंधी परिवर्तन क्यों हुए, पितृ पातेर पितर फादर फातेर में समानता है तो भिन्नता भी कम नहीं है, इस भिन्नता का कारण क्या है, इन प्रश्नों का समाधान भाषा विज्ञान का विषय। पर भिन्नता के बीच जो समानता है वही पारिवारिक वर्गीकरण की भूमिका प्रस्तुत करती है। निसंदेह ये शब्द किसी एक मूल से निकले हैं, अतः एक परिवार के हैं। भाषाओं के परिवार निर्धारण के लिए निम्नलिखित बातों पर विचार करना होता है। पहला ध्वनि, दूसरा पदरचना, तीसरा वाक्य रचना, चौथा अर्थ और पांचवा शब्द भंडार और छठा स्थानिक निकटता। इन छह आधारों पर भाषाओं की परीक्षा करने पर ही यह कहा जा सकता है कि वे एक परिवार की हैं या नहीं। इन आधारों के महत्व को लेकर भाषा विज्ञानियों में मतभेद है। कोई किसी को अधिक महत्वपूर्ण मानता है तो कोई किसी को। ध्वनि बाह्य प्रभाव के कारण या अंतर्निहित परिवर्तनशीलता के कारण कालांतर में बदल जा सकती है, अतः उसे पारिवारिक वर्गीकरण का दृढ़ आधार मानना कठिन है। उदाहरणार्थ संस्कृत में ज ध्वनि नहीं है, यद्यपि भारत यूरोपीय परिवार की अन्य भाषाओं में जैसे फारसी रूसी जर्मन आदि में वह वर्तमान है। संस्कृत में ट वर्ग है जो उपर्युक्त भाषाओं में नहीं। स्वयं एक भाषा की ध्वनियाँ भी कालांतर में बदल जाती हैं। उदाहरणार्थ संस्कृत की री ए ए ओ औ आदि ध्वनियों का आज उसी रूप में उच्चारण नहीं होता जिस रूप में वैदिक युग में होता था। इसी तरह ड ड ध्वनियाँ संस्कृत में नहीं थी, पर हिंदी आदि अनेक आधुनिक भाषाओं में आ गई हैं और संस्कृत में भी उनके शब्दों का उच्चारण हम इन्हीं ध्वनियों के साथ करते हैं। क्रीडति पीड़ा न कहकर अधिकतर संगीत संस्कृतज्ञ भी क्रीडति पीड़ा ही कहते हैं। दृढ़ गुड रूढ़ का उच्चारण दृढ़ गुड़ रूढ़ हो गया है। भाषा का शब्द भंडार भी पारिवारिक वर्गीकरण का प्रामाणिक आधार नहीं है, क्योंकि किसी भाषा में अनेक कारणों से दूसरी भाषाओं के शब्द आ जाया करते हैं। उदाहरणार्थ चाय शब्द चीनी रूसी तुर्की हिंदी में समान रूप से प्रयोग होता है, किंतु ये भाषा एक ही परिवार की नहीं है। यदि इस शब्द को लेकर कोई इन चारों भाषाओं को एक परिवार में रखने का प्रयास करे तो यह उसकी भूल होगी। अरबी के हजारों शब्द फारसी में आ गए हैं, इसी तरह तुर्की अरबी के बहुत सारे शब्द हिंदी में आ गए हैं। उससे यह निष्कर्ष निकलना गलत होगा कि तुर्की अरबी फारसी या हिंदी एक ही परिवार की भाषाएं हैं। अर्थ की स्थिति भी ध्वनि या शब्द भंडार जैसी ही अनिश्चित है। ध्वनि परिवर्तन के समान ही अर्थ परिवर्तन भी भाषा की सहज विशेषता है। आरंभ में मृग का अर्थ पशु मात्र था, किंतु बाद में वह पशु विशेष का वाचक हो गया। फारसी में उसका ध्वनि परिवर्तन भी हुआ और अर्थ परिवर्तन भी। मृग से मुर्ग बना, जिसका अर्थ हो गया पक्षी। तात्पर्य कि अर्थ भी स्थिर रहने वाली वस्तु नहीं है। परिशेषात पदरचना और वाक्य रचना ये दो ही आधार बसते हैं जिन पर व्याकरण का अनुशासन रहता है और इसके कारण उनमें कम से कम परिवर्तन होता है। परिस्थितियों में प्रभावित होकर किसी भाषा की ध्वनियाँ बदल सकती हैं, नए शब्द आ सकते हैं, अर्थ में परिवर्तन हो सकता है, किंतु पद रचना या वाक्य रचना का प्रकार आसानी से नहीं बदल सकता। इसलिए पारिवारिक वर्गीकरण पर विचार करते समय सबसे अधिक महत्व इन्हें देना पड़ता है। स्थानिक समीपता का भी पारिवारिक वर्गीकरण में योगदान है, क्योंकि संबंध भाषाएं प्रायः भौगोलिक दृष्टि से निकटस्थ होती हैं, किंतु यह अनिवार्य नहीं है। उदाहरणार्थ उड़िया और तेलुगु की सीमा एक है, किंतु दोनों एक परिवार की नहीं है। इसी तरह अरबी और फारसी में भौगोलिक दूरी नहीं है, फिर भी दोनों दो परिवार की हैं। इसके प्रतिकूल हिंदी और अंग्रेजी के बीच हजारों मील की दूरी होने पर भी वे एक परिवार की है। अतः पारिवारिक वर्गीकरण के लिए मुख्यतः पद रचना और वाक्य रचना को ही आधार मानना चाहिए। ध्वनि अर्थ शब्द भंडार एवं स्थानिक निकटता पारिवारिक वर्गीकरण के आधार तो हैं, किंतु गौण रूप में ही। उन पर पूर्णतः निर्भर नहीं किया जा सकता और संदेह की स्थिति में उन सभी आधारों को यथासंभव इतिहास पुरातत्व तथा अन्य संबंध शास्त्रों से पूरित करना चाहिए। इन सब का योग होने पर ही जो निष्कर्ष प्राप्त होगा वह ग्राह्य होगा। भाषाओं के पारिवारिक संबंध की संदिग्धता के अनेक कारण हैं। पहला, सामग्री की अल्पता के कारण निश्चित निर्णय में बाधा पहुंचती है। अनेक भाषाएं लुप्त हो चुकी हैं। कुछ भाषाओं के कतिपय शब्द भी अवशिष्ट रह गए हैं, जैसे हिंदी के। ऐसी अपूर्ण सामग्री से सर्वथा संतोषप्रद और मान्य निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। किसी भी प्राचीन भाषा का रूप शताब्दियों की कौन कहे सहस्राब्दियों तक फैला रहा होता है। इस बीच उस भाषा में न जाने कितने उतार चढ़ाव होते हैं। जिस भाषा का रूप लिखित नहीं होता है उसका तो कभी कभी नामो निशान तक मालूम नहीं होता। जो भाषाएं लुप्त हो गईं या जिनका ज्ञान अधूरा है उन्हें किस परिवार में रखा जाए यह एक समस्या है। सामग्री की अल्पता की कठिनाई अपभ्रंश यानी शब्दों के रूप परिवर्तन से और भी बढ़ जाती है। और यदि साहित्य लिखित रहा तो प्रतिलिपिकारों की संशोधन वृत्ति के कारण भी शब्दों के रूप बदल जाते हैं, इसलिए एक नई उलझन पैदा हो जाती है। दूसरा, भाषाओं के इतिहास में समकालिकता के अभाव के कारण भी कठिनाई उत्पन्न होती है। आज जो प्राचीन भाषाएं ज्ञात हैं उन सब में ऐतिहासिक दृष्टि से हजारों वर्षों का अंतर है। उदाहरणार्थ पाश्चात्य विद्वानों के अनुसार सबसे प्राचीन ज्ञात भाषा सुमेरी है, जिसका समय 4000 वर्ष ईस्वी पूर्व है। इसी तरह मिस्री 3500 ईस्वी पूर्व, सामी 2800 ईस्वी पूर्व, भारत यूरोपीय 2000 ईस्वी पूर्व, चीनी 1500 ईस्वी पूर्व, द्रविड़ 500 ईस्वी पूर्व, तुर्की 800 ईस्वी पूर्व और तिब्बती 900 ईस्वी की मानी जाती है। भारत यूरोपीय परिवार में भी भारत ईरान का समय 2000 से 1500 ईस्वी पूर्व, हित्ती का 1850 ईस्वी पूर्व, ग्रीक का 1800 ईस्वी पूर्व, ट्यूटोनिक का 300 ईस्वी, इतालिक का 1700 ईस्वी 700 ईस्वी, कोल्टिक का 800 ईस्वी, स्लाविक का 900 ईस्वी, बाल्टिक का 1500 ईस्वी है। अब यदि भारतीय अथवा ग्रीक भाषा की तुलना स्लाविक या बाल्टिक से करें तो उनमें कई हजार वर्षों का अंतर दिखता है। इस अवधि में भाषाएं निश्चित ही स्थिर नहीं रही होंगी, उनमें अत्यधिक परिवर्तन हुआ होगा और उत्तरवर्ती भाषाएं पूर्ववर्ती भाषाओं से बहुत दूर हट गई होंगी। आंतरिक कारणों के अतिरिक्त सैनिक, धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक, व्यापारिक कारणों से भी भाषिक भेद की खाई बढ़ने में सहायता मिली होगी। इस तरह काल भेद से भाषाओं के पारिवारिक संबंध के अन्वेषण और स्थापना में पर्याप्त कठिनाई हो जाती है। तीसरा, एक तीसरी कठिनाई यह भी है कि संसार की सभी भाषाओं का समान रूप से अध्ययन नहीं हुआ है। कुछ भाषाओं का अध्ययन पर्याप्त संतोषप्रद है तो कुछ का अत्यकल्प और कुछ का बिल्कुल नहीं। ज्ञान के इन तीन स्तरों पर प्रतिष्ठित भाषाओं में एक रूपता स्थापित करना न संभव है न संगत। इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रामाणिक सामग्री की अल्पता, ऐतिहासिक समकालिकता का अभाव और अध्ययन की अपूर्णता भाषाओं के बीच सुनिश्चित संबंध स्थापन में बाधक है। इसलिए भाषाओं के परिवार की संख्या में एक रूपता नहीं है। विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न संख्याएं दी हैं जो 12 से लेकर 100 तक हैं। संख्या की यह अनिश्चितता ही इस बात का प्रमाण है कि पारिवारिक वर्गीकरण के लिए जिस ठोस आधार की आवश्यकता है वह अभी तक उपलब्ध नहीं हो सका। जैसे जैसे भाषाओं के संबंध में हमारा ज्ञान बढ़ता जाएगा वैसे वैसे वर्गीकरण भी निर्दोष होता जाएगा।